हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आज क्योंकि श्रील मुरारी गुप्त का तिरुभाव तिथि महोत्सव है, उनके बारे में समाधि पुस्तक से पढ़ेंगे। वैसे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं प्रयत्न करूँगा कि यहीं से अनुवाद करने का। मुरारी गुप्त श्री चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य थे, उनमें असामान्य विनम्रता थी। उनका एक अंतरंग अजीवनांत संबंध था श्री चैतन्य महाप्रभु से। यद्यपि वरिष्ठ थे कक्षा में, मुरारी गुप्त सदैव तर्कों में हार जाते थे निमाई पंडित से। और इसी प्रकार एक तीव्र तर्क जब चल रहा था तो एक दूसरे को वो जोर दे रहे थे, और एक प्रकार से जो झगड़ा है गंगा के तट तक पहुंच गया। उन्होंने इतना कीचड़ उछाड़ दिया कि वहां पे जितनी भी स्त्रियां थी वो अपने घड़े को भर नहीं पाई, और ब्राह्मण ठीक से स्नान नहीं कर पाए। और रात को जो कीर्तन होते थे श्रीवास आंगन में, तो मुरारी गुप्त गौर हरि को प्रसन्न करते थे अपने मधुरिम कीर्तन और भागवत से। वो दक्षता से नाचते थे और गाते थे। मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु के नाद्या लीला में उनकी सेवा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार मुरारी गुप्त की आसक्ति का परीक्षा ले रहे थे अपने प्रभु रामचंद्र के प्रति। श्री गौर सुंदर ने उनको प्रचार किया, मुरारी गुप्त को परम माधुर्य और ब्रजेंद्र कुमार की पद के बारे में। मुरारी सिर्फ कृष्ण की उपासना करो और उनका शरण लो, उनकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी आपके मन को तृप्त नहीं बनाएगा। यद्यपि मुरारी गुप्त किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति प्रवृत्त थे, फिर भी उनको लग रहा था कि श्री रामचंद्र का संग जो है, यदि उसको खो जाऊं तो मैं टूट जाऊंगा पूरी तरह। तो उस रात को उन्होंने श्री रामचंद्र से प्रार्थना की कि मेरा जान ले लीजिए, मेरा प्राण ले लीजिए। उन्होंने ये पूछ लिया क्योंकि वो रामचंद्र की सेवा रोक नहीं सकते थे, ना ही चैतन्य महाप्रभु का अनुरोध उसको नकार सकते थे। तो रात भर रोने के बाद मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के पास समीप गए और पूछे, मैं क्या करूं, मैंने तो अपना सर श्री रामचंद्र के चरण कमलों को बेच दिया है। यद्यपि मैं आपके आज्ञा को तोड़ूं कि श्री कृष्ण की उपासना करूं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो मुस्कुराते हुए गौर राय ने उत्तर दिया, मुरारी गुप्त की जय। तो आप अपनी उपासना में, अपनी भक्ति में इतने निष्ठाशील हो कि मेरा अनुरोध भी आपको अपने आपके मन को विचलित नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार का प्रेम और प्रीति सेवक के पास होना चाहिए परम भगवान के चरण कमलों में। यदि भगवान विरह चाहते हैं तो भक्त को उनका शरण छोड़ना नहीं चाहिए, उनके चरण कमलों का शरण तभी भी नहीं छोड़ना चाहिए यदि भगवान चाहते हैं कि वो अलग रहे। तो सिर्फ तुम्हारी प्रबल श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मैंने बार बार तुमको ये बताया कि श्री रामचंद्र की उपासना से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। तो मुरारी गुप्त की सराहना देते हुए भगवान आगे जारी रख रहे थे। उन्होंने बताया कि तुम हनुमान जी के अवतार हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। तो जो श्री रामचंद्र के शाश्वत सेवक हैं, इसलिए तुम्हें श्री रामचंद्र की सेवा छोड़ने की आवश्यकता ही क्या है। तो दूसरे समय ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने सीताराम लक्ष्मण का रूप जो है उनको दर्शन के रूप में प्रदर्शित किया, और साथ ही साथ जितने असंख्य वानर थे और उनके संगी परिकर थे उन सबका भी दर्शन दिलाया, और स्वयं को भी देख लिया उन्होंने मुरारी गुप्त ने हनुमान के रूप में इस दर्शन में, इस प्रकाश लीला में। तो इसको देख के मुरारी गुप्त जो है बेहोश हो गए, और कटवा में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया तो मुरारी गुप्त वहां खड़े थे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर रो रहे थे। और जब श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए थे तो मुरारी गुप्त और उनकी पत्नी प्रतिवर्ष आते थे जगन्नाथपुरी में उनका संग प्राप्त करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। क्योंकि आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं उनके वंश में वो जात थे, उनका जन्म हुआ था, इसलिए मुरारीगुप्त ने भी वैद्य चिकित्सा का अनुशीलन किया। तो लेकिन उनकी प्रक्रिया इतनी अनुपम थी कि उन्होंने अपने भक्तों का शारीरिक पीड़ा तो दूर कर ही दी, लेकिन भौतिक भाव बंधन से भी मुक्त कर दिया। हरि बोल। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रथम कथा जो है उन्होंने लिखा था, उनके बारे में उनका चरित्र, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत में संकलन है, ये लेखन है, ये जो लिखा गया था संस्कृत में उनकी कथा लिखी गई थी, और उसका नाम है क्या है, चैतन्य चरित महाकाव्य, चैतन्य चरित महाकाव्य। तो उनकी समाधि भी 64 समाधि के प्रदेश में उपस्थित है। श्रील मुरारी गुप्त पाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। हाँ बताए, एक बार बताए, आपसे मैंने एक बार सुना भी था, तो आप ही बताए बताए उनकी डिटेल्स कहाँ है। तो गौड़ी मठ का मंदिर है छोटा सा, वहां पे आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में, कि वहां पे मुरारी गुप्त द्वारा उपासित, उनके द्वारा पूजित, उनके परिवार के द्वारा आगे उनके वंश ने आगे भी किया था, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के, खाली जगन्नाथ जी सॉरी, हाँ हाँ अच्छा, जगन्नाथ जी के कान भी हैं, बहुत अच्छी बात है, कि मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो जगन्नाथ जी बस देख के ऐसे निकल गए मैं, तो जगन्नाथ जी के कान भी हैं। तो आगे बढ़ते हुए कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बताने के लिए आज्ञा मिली थी मुझे कदम बिहारी प्रभु से, अचानक याद आया कि कल रात को याद आया कि लेक्चर देना है आज सुबह, और वैसे आप मैसेज कब आया था आपको, परसों आया था कि परसों में जाता आपने, परसों रात को मैंने उनको कन्फर्म किया, और कल पूरा दिन कुछ न कुछ कर रहा था, अचानक भगवत कृपा से यूं हुआ संयोग कि श्रील सचिनंदन स्वामी महाराज पधारे इस्कॉन दिल्ली में, और उन्होंने पहले दर्शन किया, फिर उसके बाद उनका छोटा सा प्रवचन भी था ऑडिटोरियम में कल, तो उसमें महाराज ने कार्तिक मास महात्म के बारे में बताया, पूरी तरह नकल तो नहीं कर सकता क्योंकि उतनी अकल नहीं है, फिर भी कुछ उसमें से बोलूंगा, कुछ बाकी अन्य वैष्णवों से जो सुना है या जिनसे जो लेखन प्राप्त हुआ है उसे कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। वैसे तो बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि विष्णु के जो अनुयायी हैं या भक्त हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, याद से पेन वापस देना, तो उनके विष्णु के अनुयायी को वैष्णव बोलते हैं, कृष्ण के अनुयायी को क्या बोलते हैं, कार्ष्णी बोलते हैं, एक संप्रदाय में है कई लोग कार्ष्णी करके, वैसे वो सिर्फ कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा रानी नहीं है, लेकिन हमें गौड़िया वैष्णव क्यों बोला जाता है, भक्त सिद्धांत महाराज बताते हैं, जो श्रीमती राधा रानी के अनुगत है, अनुयायी है या भक्त है, उनको गौड़िया बोला जाता है। तो हमारे एक मित्र बोलते हैं कि हम गौड़ी वैष्णव इस समय आने के बाद भी, क्योंकि घर और गाड़ी से आ सकते हैं, कारागृह है ना, कार और ग्रह, गाड़ी और घर से आसक्त हो जाते हैं कारागृह, इसलिए हमें गाड़िया वैष्णव बोला जाता है कभी कभी, लेकिन वैसे तो गौड़ी वैष्णव होना चाहिए हमें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के हम अनुयायी अनुगत है। तो विशेष करके हम कार्तिक मास का अनुशीलन हमें करना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य है श्रीमती राधा रानी की उपासना अथवा भक्ति। इसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है, इसमें जो व्रत अथवा नियम सेवा की जाती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम ऊर्जेश्वरी राधिका है, और कार्तिकी देवी भी बोलते हैं, इसलिए कार्तिक मास में उनकी प्रसन्नता के लिए हम व्रत का अनुशीलन करते हैं। तो स्थव माला में रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं अपने ग्रंथ में कि कार्तिकी देवी शब्द से उन्होंने वर्णन किया है श्रीमती राधा रानी का। तो कार्तिकी देवी की प्रसन्नता के लिए, ऊर्जेश्वरी राधिका की प्रसन्नता के लिए हमें ऊर्ज व्रत का अनुशीलन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। ये बताया जाता है कि हरिभक्ति विलास में और मथुरा महात्म्य में, पद्म पुराण में और अन्यत्र कई जगह बताया जाता है कि ये व्रत का, इस व्रत का अनुशीलन करना न सिर्फ लाभदायी है अपितु अनिवार्य भी है। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक व्रत का अनुशीलन नहीं करता तो उसके सारे पुण्य जो है उनकी क्षति हो जाती है। क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति तो स्वर्गलोक के लिए बोलते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी जितने भी पुण्य है, आध्यात्मिक सुकृति है, क्षीण हो जाती है कार्तिक व्रत का अनुशीलन नहीं करने से। पहले तो बताते हैं ना, पहले भय, फिर सम्मान, फिर प्रेम, तो पहले भय से शुरू करते हैं। तो कार्तिक व्रत नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है, ऐसा सोच लेते पहले। फिर आगे बताया गया कि बहुत विशेष बात है, आप ध्यानपूर्वक सोचिए कि वैश शक्ति शक्तिमताम अभेदा। वैसे तो बताते हैं शास्त्र में शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, लेकिन शक्तिमान के लिए जितने भी व्रत का आचरण किया जाता है, या दोपहर तक व्रत है, या शाम तक है, या चंद्रोदय तक है, या संध्या तक है, लेकिन शक्ति का व्रत जो है, श्रीमती राधा रानी जो शक्ति तत्व है, उनका व्रत जो है पूरे एक महीने तक चलता है। तो इसलिए बहुत शक्ति चाहिए। हाँ, शक्ति के इस व्रत के आचरण के लिए भी शक्ति चाहिए, लेकिन फायदा यह है कि शक्ति मिलता है, बल मिलता है, शक्तिपात मिलता है। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, ऊर्जा, संस्कृत में ऊर्जा। तो इसलिए ऊर्जा व्रत का हमें अनुशीलन करना चाहिए, चाहे नरसिंह देव का हो, वामन देव का हो, वरादेव का हो, या गौरांग महाप्रभु स्वयं का हो, परम भगवान श्री कृष्ण का हो जो कि 12 बजे तक रात को करते हैं भक्त। लेकिन श्रीमती राधा रानी के लिए जो नियम व्रत है वो एक महीने तक चलता है, और उनकी प्रसन्नता के लिए इस नियम व्रत का हमें आचरण करना चाहिए। वैसे कोई भी वस्तु अति प्रिय है तो उसे अपने अति प्रिय व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए क्योंकि कार्तिक महीने में शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाता है। बताते हैं जितना भी व्रत, यज्ञ, दान, तपस्या कुछ भी करते हैं उसके लाखों करोड़ों गुना लाभ मिलता है, एक प्रकार से शॉर्टकट है। तो क्योंकि इस मास में इतना लाभ है, इतने फायदे हैं इसमें, तो परम भगवान श्री कृष्ण ने जय श्री श्री राधा राधिका रमण जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा कृष्ण बलराम गौर निताय श्रील प्रभुपाद की। तो इसलिए भगवान ने इस महीने का एक प्रकार से अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी को ही बना दिया। हर महीने का वैसे एक नाम होता है, इस महीने का नाम दामोदर मास भी है, और दामोदर मास में बहुत विशिष्ट लीलाएं हुई, कई सारे त्योहार भी आते हैं, उत्सव आते हैं। वैसे तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि क्या बोलते हैं अपने आप को, कौन सा महीना है वो, मार्गशीर्षाणा, माघ महीना, मासाना मार्गशीर्षाहम। तो मार्गशीर्ष का महीना स्वयं भगवान है। बताते हैं कि कार्तिक व्रत का पूरा लाभ मिलने के लिए एक प्रकार से जितने भी व्रत और उपचार हमने प्रस्तुत किए हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको दोहराना चाहिए माघ के महीने में, मार्गशीर्ष में, ऐसा बताते हैं। वैसे इसके अलावा पुरुषोत्तम मास भी आता है, तो कभी कभी लगता है कि भक्ति में इतना आनंद है तो इतनी तपस्या करनी क्यों पड़ती है, क्यों? इसलिए क्योंकि हमें अभी तपस्या का आनंद नहीं मिल रहा है। अभी प्रभुपाद कई स्थानों में बताते हैं कि भक्ति में पारंगत होने का, दक्ष होने का, अग्रसर होने का, आगे बढ़ने का लाभ यह है कि भोजन और निद्रा के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाती है, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो भी विकार हैं इनका प्रभाव भी कम होता है। यदि अगर इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या और काम वासना हमारी कम नहीं हो रही है, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा एक भक्त से बताया था श्रील प्रभुपाद ने, एक वर्तमान आचार्य अपने प्रवचन में बताते हैं तो इसे सुना था। इसी प्रकार निद्रा और भोजन जो है उसके प्रति आसक्ति अपने आप कम होनी चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए दृढ़ता की, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, उत्साह निश्चया धैर्य निश्चय की आवश्यकता है। और कई प्रकार कई समय भक्त पूछते हैं प्रश्न कि हम भक्ति में कैसे निश्चय का अनुशीलन कर सकते हैं, निश्चय कैसे आ सकता है, डिटर्मिनेशन। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया गया था एक भक्त द्वारा कि किस प्रकार निश्चय का अनुशीलन करें भक्ति में, निश्चय का गुण वैशिष्ट अपने में कैसे प्राप्त करें। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि चार नियमों के पालन करने से भक्ति में निश्चय आ जाता है। तो अगला प्रश्न यह है कि चार नियमों के पालन में यदि निश्चय नहीं है तो उसमें कैसे निश्चय ला सकते हैं। तो जब यह प्रश्न किया गया श्रील प्रभुपाद से तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, यदि चार नियमों के पालन करने में तुम्हारे पास निश्चय नहीं है तो तुम जानवर हो, पशु हो, क्योंकि तुमने दीक्षा प्राप्त करते समय गुरु अग्नि देवता वैष्णव के और अर्चकों के सामने यह प्रण लिया था, यह निश्चय लिया था कि मैं चार नियमों का पालन करूंगा, 16 माला का ध्यानपूर्वक जप करूंगा। इसके बावजूद तुम में निश्चय नहीं है तो तुम पशु हो। ये सुन के ये लीला पहले जब सुना था तो बहुत मैं बिविल्डर हो गया था, बहुत विकलित हो गया, तो होगा क्या मेरे जैसे लोगों का। तो फिर कई भक्तों से कई बार ये प्रश्न किया था तो दो तीन उत्तर मिले। एक उत्तर ये था कि कहीं से तो शुरू करो, कुछ ना कुछ शुरू करो, ये ना तेना प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, कैसे भी कहीं से भी शुरू करो, प्रारंभ करो। और बताते हैं जैसे कि कई बार हम चर्चा करते हैं कि कोई कीड़ा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, खिड़कियां दरवाजा बंद है तो बार बार उस पर जाके ठोकता है, अपने आप वो निकल नहीं सकता बाहर। तो उस पर अनुकंपा दिखाते हुए कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो वो खिड़की अथवा दरवाजा खोल देता है। इसी प्रकार क्योंकि हमें क्षमता नहीं है, हम मात्र प्रयत्न करें, जैसे कई बार हम चर्चा भी करते हैं, सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज बताते हैं ये संघर्ष ही हमारी प्रक्रिया है, द स्ट्रगल इज द प्रोसेस। तो क्योंकि जब हम संघर्ष करेंगे तो भगवान इस संघर्ष से आकर्षित होते हैं, एक प्रकार से कृपा आ जाते हैं उनमें, बेचारा इतना तकलीफ ले रहा है, मेरे लिए कष्ट ले रहा है करके भगवान खिड़की अथवा दरवाजा खोल देते हैं भक्ति का। तो इस निश्चय के लिए दो बातें बताई जाती हैं, एक परम वैष्णव आचार्यों का गुणगान करना, विशेष करके उनका उनकी लीला अथवा चरित्र का हमें अध्ययन करना चाहिए और गुणगान करना चाहिए ताकि उनके गुण हमें भी आ सकते हैं। तो एक प्रकार से भगवान की विशेष कृपा है कि आज कार्तिक मास के बारे में मुझे बोलना था, मुझे कुछ पता नहीं था, अभी भी कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवत कृपा से आज मुरारी गुप्त पाद का तिरुपाद दिवस आ गया था, आज सुबह ही मुझे याद आया, पता चला जब सुबह प्रेम ध्वनि के समय पता गया मुरारी गुप्त तिरुपाद तिथि महोत्सव की जाए। तो क्योंकि उनका गुणगान हम कर रहे हैं तो आज कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से, विशेष करके दिल्ली में कई जगह 19 को भी मनाते हैं, तो पूर्णिमा पद्धति भी है और एकादशी पद्धति भी है। इस्कॉन में कौन सी पद्धति का हम पालन करते हैं, पूर्णिमा, अन्यथा वो शयन एकादशी के बाद चातुर्मास का प्रारंभ होता है, फिर इसके पिछला एकादशी कौन सा है इसके याद है, पशांकुश एकादशी, पाशांकुश एकादशी के दिन कई लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस्कॉन में हम अधिकतर पूर्णिमा पद्धति का ही पालन करते हैं। तो ये बहुत विशेष दिवस है कि मुरारी गुप्तपाद का गुणगान करते हुए हम उनसे याचना कर सकते हैं कृपा की कि हमें भी वो निश्चय आ जाए कि ऊर्ज व्रत का हम पालन करें। तो एक बात है कि धर्मस्वनिष्ठता पुंसा विश्वक सेनो कथा सुया न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कोई भी व्रत यज्ञ दान तपस्या ये तीनों चीज चाहिए, भगवान बताते हैं भगवद गीता में यज्ञ दान तपस्या ये तीनों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि तपोदिव्यम पुत्र का यह न सत्व शुद्धयेति अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तपस्या करने से ब्रह्म सुख मिलता है, इसलिए कुछ ना कुछ तपस्या हमें करनी चाहिए। तो इसलिए दूसरा कारण जिसे हमें निश्चय मिलता है वो ये है कि एकादशी, द्वादशी या अन्य विशेष दिवस, आचार्यों के आविर्भाव, तिरुभाव तिथि, विष्णु तत्व के आविर्भाव दिवस, शक्ति तत्व के आविर्भाव दिवस, इन सभी दिवसों में और खास करके कार्तिक मास का व्रत के आचरण इत्यादि करने से हमें निश्चय बढ़ता है भक्ति की विधियों के पालन करने के लिए, डिटर्मिनेशन आ जाता है, कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं। और इन सब में आसान कार्तिक मास है, क्योंकि बताया जाता है कि हंसी मजाक में, जैसे कि हेला नामाभास बोलते हैं, नामाभास में हंसी मजाक में हरिनाम ले लिया, वो हरे कृष्ण वाला जा रहा है, तो उसके लिए भी लाभ मिल सकता है। उसी प्रकार कार्तिक मास में हंसी मजाक में भी जिसने मथुरा वास करते हुए कार्तिक मास का आचरण किया है उसको भी भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, ग्रंथ बताते हैं, आचार्य बताते हैं। तो सोच सकते हैं कि फ्री में या डिस्काउंट में, बताते हैं ना कि जैसे दिवाली में डिस्काउंट सेल चलता है, दिवाली आ रहा है तो डिस्काउंट सेल चलता है, फ्री में बहुत सारे या डिस्काउंट में बहुत सारी चीजें मिलती है, उसी प्रकार कार्तिक के महीने में कृपा ढेर सारी मिलती है, कुछ ना कुछ लेकिन तपस्या करेंगे तो और लाभ मिलेगा, कुछ हम चर्चा कर सकते हैं उनके बारे में। और इसको करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पाद जैसे बताते हैं, हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यदि मैं अपने क्षमता से कम कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए तो यह सेवा अपराध है। जैसे कि श्रील चंद्रमौली महाराज से एक बार सुना था हमने कि कृष्णा सीज व्हाट यू आर डूइंग फॉर हिम, कृष्णा ऑल्सो सीज व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग बट आर स्टिल नॉट डूइंग फॉर हिम। कृष्ण ये देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं और कृष्ण ये भी देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि जैसे ही गौड़ी वैष्णव इसका आचरण करते हैं तो इसके द्वारा मन और इंद्रियों का दमन होता है, और मन और इंद्रियों के दमन करने से यहां पर परम भक्ति भी मिल जाती है। क्योंकि समसिद्धिर हरितोषणम, जो भी हम कर रहे हैं इस व्रत की पूर्णता है भगवान की प्रसन्नता। तो कार्तिक व्रत से बहुत सारे पुण्य हैं कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ यात्रा हैं, जितने भी व्रत हैं, जितने भी संकल्प हैं, जितने भी यज्ञ हैं, दान हैं, तपस्या हैं, इन सब का लाभ एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक मास का लाभ जो है हजारों जन्मों तक रहता है। अब आप बोलोगे शुद्ध भक्ति मिलेगी तो फिर हजारों जन्म कैसे, तो वो इसलिए क्योंकि हमें असीम क्षमता है कि जितने भी सुकृति हमें प्राप्त होती है उसको नष्ट करने की। क्योंकि जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दीक्षा के समय दीक्षा काले शिष्य करे भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम, कि भगवान उस समय अपने समान कर देते हैं भक्त को, उसके बाद भी 16 माला करने में इतना संघर्ष क्यों होता है। भागवत क्लास में जागे रहना तब संभव होता है जब कोई व्यासासन पर बैठा है। तो एक बार हमें अनुभव हुआ था कि बहुत थक के गुड़गांव में कभी प्रचार के लिए गए थे, तो सेक्टर 10A में कृष्ण मंदिर वहां पे प्रवचन चल रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे गा लिया था, उसके और हरे राम के बीच में झपकी आ गई, बहुत थक गया था, तो भगवत कृपा से मृदंग वाले ने जोर से बजा लिया और जगा लिया, तो इसलिए हरे रामा सही टाइम पे प्रारंभ कर पाए ताल के अंदर। तो ये इस प्रकार की तपस्या क्यों होते हैं हमें, क्योंकि अभी तक हमें रुचि आई नहीं है कृष्ण भक्ति में, और इसके लिए कार्तिक मास जो है बहुत अच्छा तरीका है, जो संघर्ष करने वाले साधक हैं, हम में से कई लोग संघर्ष करने वाले साधक हैं। मैं खुद का परिचय तो वैसे ही देना चाहता था कि रुकने के प्रभु आए नहीं थे प्रवचन में, तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद दें कि कम से कम आगे जो बोलूंगा वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए हो और शास्त्र के और गुरु हरि गुरु वैष्णव की के इच्छा के अनुसार हो। क्योंकि छोटा सा कोई भी समर्पण हम कर दें कार्तिक मास में, उससे असीम लाभ मिलता है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं अंग्रेजी में, वैसा है। जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बोलते हैं ना, आप बस 100 रुपए डाल दो, ये 10 साल में इतने रुपए बन जाएगा, तो उतना वेट भी नहीं करना, उसी महीने में हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कार्तिक के मास का। वैसे तो बहुत सारे बोलते हैं कि कुछ सिर्फ उन लाभों के बारे में बताएंगे जो गौड़ी वैष्णवों के लिए प्रैक्टिकल है। एक है प्रतिदिन हरि कथा का श्रवण करें, और ये प्रभुपाद ने कार्तिक मास का पालन और अनुशीलन भी हमारे लिए इतना आसान बना दिया है कि प्रति दिवस एक एक श्लोक भगवत गीता और भागवतम का श्रवण हम वैसे भी करते हैं, लेकिन इससे अधिक हम भागवतम का एक श्लोक प्रति दिवस उसका अध्ययन करते हैं, तो उससे इतना लाभ मिलता है जितने 18 मुख्य पुराणों का अध्ययन हम करेंगे उससे मिलता है। मुख्य पुराण तो 18 है, 108 है, उसमें भी 18 है, 6 सतोगुण में, 6 रजोगुण में, 3 तमोगुण में ऐसा। तो आगे बताया गया विशेष करके पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म न विद्यते जैसे बोलता है, लेकिन वो कैसे होता है साइंटिफिकली हम जानते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, लगभग 75% श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमारे अनर्थ जो है कट जाते हैं प्रति दिवस भागवत का अध्ययन करने से। लेकिन कुंजरा शौच भी होता है कभी कभी, अनर्थों का नाश होने के बाद भी हम वैष्णव अपराध करते हैं, जीवापराध, सेवापराध, नामापराध, सभी प्रकार के अपराधों में दक्ष होने का कोशिश करते हैं। तो आगे यहां पे बताया गया कि भगवान के नाम रूप गुण लीला साज सज्जा संग परिकर वैशिष्ट, इन सब का जो भी गुणगान करता है इस मास में, न सिर्फ वो बल्कि उसके 100 पीढ़ियां सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सबको लाइट लग रहा है ना, 100 जन्म 100 पीढ़ियां तो है, हरि बोल। तो एक खुद का जन्म बचाना जन्म सार्थक करी परोपकार वही मुश्किल लग रहा है, लेकिन कार्तिक मास के अनुशीलन से देखिए सुपर डिस्काउंट से मिल रहा है कि 100 जन्म जो है, 100 पीढ़ियां जो है उनका उद्धार हो जाएगा, उनके पापों की क्षति हो जाएगी। वैसे तो बताते हैं कि राधा कृपा कटाक्ष का जो है रोज पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का अध्ययन कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं जो लोग जानते हैं, कई सारे चीजें हैं। इसके अलावा और भी हैं कि नंद नंदाष्टकम है, कई भक्त वैसे करते हैं, ये दोनों करते हैं, और दामोदराष्टकम है, बहुत विशेष है, और हर मंदिर में इस्कॉन के 2 बार या 1 बार दामोदराष्टकम का पाठ होता है, कम से कम 1 बार तो होता है शाम को, और शाम को दीपदान अर्पित किया जाता है कार्तिक मास में। इसके अलावा ये बताया जाता है कि दशम स्कंद का और राधा कृष्ण के वृंदावन लीला का जो पे वर्णन होता है उसका अध्ययन कर सकते हैं। जिन लोगों को अनुमति नहीं मिली है उनके पदाधिकारी से, आध्यात्मिक पदाधिकारी से, तो वो कृष्ण बुक का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण बुक का जैसे चैतन्य शिक्षामृत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि एक एक लीला जो है एक अनर्थ के निवृत्ति को सूचित करती है। जैसे पूतना का वध का अध्ययन करेंगे हम उस लीला का, तो ढोंगी गुरु से हम बच सकते हैं या बचा भी सकते हैं, श्रील प्रभुपाद से लोगों को और तीव्रता से जोड़ सकते हैं, स्वयं को भी और तीव्रता से जोड़ सकते हैं गुरु परंपरा से। ऐसे बहुत सारे लाभ मिलते हैं एक एक लीला के अध्ययन से, क्योंकि अनर्थ कटते हैं। और आगे बताया गया कि भगवान को कुछ भी हम अर्पित करें, चाहे अन्न हो या किसी भी प्रकार की सामग्री, उसका अक्षय फलम प्राप्त होता है, अक्षय फल। और बताया गया कि श्री कृष्ण को कार्तिक मास में विशेष करके दामोदर भगवान की उपासना करेंगे तो गोलोक वृंदावन सुनिश्चित है। जब वॉइस रेज करता हूं तो आप लोग हरि बोल बोलिए। तो वैसे बताया गया कि खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा और अनुकंपा देखिए कि उन्होंने वैसे ही कार्यक्रम पहले ही सुसज्जित कर दिया कि कार्तिक मास का अनुशीलन सरल हो जाता है। एक बात बताई गई है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है। कई देशों में ब्राह्म मुहूर्त में उठना बहुत मुश्किल है, कई देशों में स्नान करना भी बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन यहां पर बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो करता है मंगल आरती खास करके अटेंड करता है, ब्राह्म मुहूर्त का समय है 4:10 से 4:58 तक ये मुहूर्त। इस्कॉन में वैसे तो वृंदावन में मायापुर में 4:10 को आरती होती है, इसलिए प्रारंभ हो जाती है कहीं ना कहीं समाधि मंदिर में। लेकिन 4:30 से 4:58 तक हम गुरुवाष्टकम और नरसिंह आरती का रोज प्रार्थना गाते हैं। तो ये अनिवार्य है कार्तिक महीने में। जो लोग संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं मंगल आरती आने के लिए, विशेष करके जो बाहर सेवा करते हैं, उनको रात को शायद आने में लेट होता है जिस वजह से सुबह उठ नहीं पाते या घर पे और भी व्यस्तता है, तो कम से कम ये महीने मंगल आरती में आना बहुत लाभदायी है। तो एक प्रकार से टेम्पल हॉल भर जाना चाहिए कार्तिक मास के महीने में, ये प्रयत्न होना चाहिए। कांग्रेगेशन प्रीचर्स खास करके जो हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि भक्ति वृक्षा आश्रय या नामाटा से जो जुड़े हैं वो सारे भक्त मंगलारती में आने की कोशिश करें, कम से कम कुछ नहीं तो गुरुवाष्टकम गा के निकल जाएं और घर जाके सो जाएं, शुरू करें वहां से शुरू करें, लाभ बहुत मिलता है उससे। और आगे रोज एक घी का दीप राधा दामोदर को अर्पित करेंगे, राधा कृष्ण के अर्च विग्रह को या चित्र को, और दामोदराष्टकम के पास दामोदराष्टकम के साथ उसके कीर्तन करते हुए ये भी अनिवार्य है एक नियम। ये दो नियम तो इस्कॉन के सारे भक्त गाते गाते कर सकते हैं, ऐसे से इन इंग्लिश दे कैन सिंग देयर वे। सुबह उठ के गुरुवाष्टकम तो वैसे भी होते हैं मंदिर में, खास करके जो आवासी निवासी भक्त हैं उनके लिए तो ये सरल है ये विधि। तो इसलिए सोचना चाहिए कि मंदिर में जो निवासी भक्त हैं उनके लिए कुछ और ज्यादा तपस्या होनी चाहिए। बाकी 11 महीने तो कर ही रहे हैं मंगल आरती, अब बोलेंगे दामोदराष्टकम बहुत बड़ी तपस्या है, उतना तो नहीं है। वी हैव टू बी स्पिरिचुअली सिंसियर कि कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे एक वर्तमान आचार्य बोलते हैं कि भगवान को कुछ भी देते हैं वी शुड गिव टिल इट पिंचस। जैसे ईसाइयों के धर्म में एक सिद्धांत है टाइथिंग, TITHING, टाइथिंग। टाइथिंग मतलब हर भक्त को अपने तनख्वाह से वेतन से एक, एक अनुपात के अनुसार जितना हो सके एक संख्या देनी चाहिए, एक धनराशि निर्धारित धनराशि हर महीने देना चाहिए, वो संकल्प लेते हैं। उसी प्रकार कार्तिक महीने कम से कम संकल्प ले सकते हैं हम कि मेरे वेतन से मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो हर महीने देता हूं वो मंदिर को दान दे सकता हूं। दिस इज फॉर द सपोर्ट ऑफ द टेंपल मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर। रोहिणी में भी दे सकते हैं। तो ये बात है कि हम धनराशि दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इस महीने, भगवान को जो भी देंगे उसे अधिक लाभ मिलेगा। तो कहने का उद्देश्य हम जो कर रहे हैं उससे अधिक कुछ हमें करना चाहिए। हो सकता है कुछ एक टारगेट ले लें कि इस महीने में इस पुस्तक का मैं पूरा अध्ययन कर लूंगा या इस श्लोक अथवा सूक्त को मैं कंठस्थ कर लूंगा। ये मंदिर के भक्त कर सकते हैं कि उनको पहले ही वो प्रवृत्ति है ऐसे चीजों में, या फिर जितनी संख्या में जप कर रहे हैं वो संख्या बढ़ा सकते हैं यदि सेवा में कोई बाधा ना हो। सुबह और जल्दी उठ सकते हैं और अधिक माला कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो अधिक ध्यान पूर्वक माला करने की कोशिश करें। ये कर सकते हैं। जैसे कल श्री सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ध्यान पूर्वक जप करिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। अगर पूरा नहीं कर सकते, 15 माला 107 बार नहीं हुआ, 107 आठवें मंत्र में आखिरी शब्द हरे में हृदय से आप भगवान को अर्पित करिए, बोलिए हरे। कम से कम आप लोग तो बोल रहे हो, मैं तो कभी से नहीं बोल रहा, लेकिन हृदय से बोलिए हरे। या एक एक मंत्र जो है ध्यान पूर्वक करें। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आसन्न मृत्यु है, मृत्यु सामने खड़ी है, ऐसा सोच के हमें एक एक माला करनी चाहिए। और कार्तिक मास हो सकता है आखिरी कार्तिक मास है हमारा, प्रभु जी बोल रहे राम नाम वही है, राम नाम सत्य है, तो इसलिए हरे कृष्णा हरे राम जो भी है नाम उसका और अधिक से अधिक करना चाहिए। और एक अखंड दीप का प्रज्वलन करके उसको रख सकते हैं, एक आकाश दीप बोलते हैं, उसका और भी विशेष महत्व है कि एक खंबे को रख सकते हैं और उसके ऊपर खंबा या बहुत बड़ा स्टिक जो है रॉड है उसके ऊपर लैंप को रख सकते हैं। वैसे दिवाली दीपदान तो होता ही है, इसको पूरे महीने में कर सकते हैं, इसको बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए भी एक कथा उन्होंने बताई थी कल, वैसे आप लोगों ने सुना होगा एक घटना, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कि तीन चार शराबी थे एक विष्णु मंदिर के बाहर और तुलसी का पौधा भी था वहां पे, और उन्होंने नाम कुछ बताया श्याम जी और कुछ ऐसे नाम बताए, जो भी यहाँ पे बताए कोई भी नाम बोलेंगे यहाँ पे रिस्क है, इसलिए नहीं बोलेंगे। तीन चार शराबी थे और वो बस एक दूसरे की मुस्कान देखना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीप को प्रज्वलित किया और वहां रख दिया, और अचानक उसमें एक को प्रेरणा मिली परमात्मा से या मन से जैसे भी, उसको लगा कि हम सब पक्षी हैं। तो उन्होंने क्या किया, जिस खंभे पे दीप रखा था उन्होंने अपना अंगोछा जो भी है निकाल के उसको ऐसे पकड़ लिया और ऐसे फेरते हुए उसको उस खंभे के चारों ओर दौड़ने लगे, और इससे दीप प्रज्वलन और परिक्रमा दोनों हो गई, क्योंकि तुलसी महारानी भी थी, परिक्रमा भी हो गई और दीपदान भी हो गया। और महाराज बताते हैं कि उनको चतुर्भुज रूप मिल गया। तो इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। तो इसके तो इससे हम समझ सकते हैं इस लीला से कि इस प्रकार संकेत या हेल या किसी भी रूप में करने से भी लाभ मिलता है, तो हम हृदय से भगवान की प्रसन्नता के लिए ऊर्जा व्रत का अनुशीलन करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा हमें, यह हमें सोचना चाहिए। आगे और भी बताते हैं कि प्रसाद और जल तर्पण अपने पूर्वजों को अर्पित कर सकते हैं जो भक्त उसमें विश्वास रखते हैं। वैसे द्वैत संप्रदाय में माधव संप्रदाय में तो आता ही है कि श्राद्ध के दिन भी वो पहले भगवान को भोग अर्पित करते हैं, उस प्रसाद को फिर आगे अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, लेकिन कम से कम हम यहाँ पे बताया गया ऐसा कर सकते हैं। हरिभक्ति विलास में विशद रूप में इसका वर्णन है। और एक और है कि न सिर्फ तुलसी के जो का जो तन अथवा डंडे से जो हम करते हैं उससे दीप को प्रज्वलित करते हैं और अर्पित करते हैं, उसमें विशेष लाभ है, हजारों करोड़ों गुना लाभ है। और यदि उससे हम दूसरे व्यक्ति के दूसरे भक्त के दीप को प्रज्वलित करते हैं तो और लाभ मिलेगा। तो न ऐसा होता ना कि स्वयं के लिए जो जप कर रहे हैं वो तो लाभदायी है, लेकिन जब संकीर्तन करते हैं बाकी जीवों के लाभ के लिए तो और लाभदायी है, स्वयं के लिए भी और उनके लिए भी। तो इस प्रकार ये कर सकते हैं। और विशेष करके जैसे हम आए आज, कम से कम ये लाभ तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शाम को करूंगा कि मेरे एक प्रिय मित्र हैं जो हमेशा मुझे तंग करते हैं खास करके पंजाब बाग मंदिर में, तो उन्होंने आज भी मुझे खींच के नृत्य करने के लिए बाध्य किया। तो मेरे अटल परिश्रम के बावजूद उन्होंने थोड़ा नचा दिया, तो लेकिन इससे बहुत लाभ मिलता है क्योंकि वाद्य वृंद के साथ कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए उत्साह के साथ भगवान के सामने कीर्तन करेंगे तो ये अनिवार्य एक प्रकार से पद्धति, इससे बहुत लाभ मिलता है कार्तिक में। कार्तिक में और कीर्तन कर सकते हैं, जैसे अखंड कीर्तन 2400 घंटे या 12 घंटे 6 घंटे जो भी है कर सकते हैं अपने अपने समय काल परिस्थिति और क्षमता के अनुसार, और मंदिर के अनुसार। और जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो बताया गया है कि अर्च विग्रह के सामने बैठ के 108 बार गायत्री का जप कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं। प्रभु जी पूछ रहे पूरे महीने में करके, जैसे तो कार्तिक महीना कार्तिक मास का व्रत है ना इसलिए। और ब्रह्मचर्य का अनुशीलन करना चाहिए इस पूरे मास में, कोई किसी भी आश्रम में हो ब्रह्मचर्य का अनुशीलन अनिवार्य है इस महीने में, करने से बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसे फर्श पे सो जाना चाहिए बिना किसी बिस्तर के, ऐसा बताते हैं। लेकिन मार्बल का फ्लोर है वगैरह तो फिर देख लीजिए, पूरा कार्तिक नहीं कटेगा फिर। कार्तिक व्रत तो छोड़ो। तो रोज 108 दंडवत करना है, कर सकते हैं। मानसी बोल रहे हैं ब्रो, तो संख्या पूर्वक नाम गाना नति भी, उसमें अधिक से अधिक दंडवत कर सकते हैं भक्तों को, इससे लाभ मिल सकता है। ये कर सकते हैं, गायों को ताजा घास जो है उनको खिला सकते हैं कार्तिक में, ये भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी तपस्या कार्तिक में जो हम अनुशीलन कर सकते हैं तो जीवन भर के लिए भी हमें लाभ मिलेगा, कि किसी की निंदा ना करें, किसी में दोष ना देखें और हर भक्त में गुण देखें, वैशिष्ट्य देखें। इसलिए आज लेक्चर के बाद आप में से कोई भी फीडबैक ना दें, तो गुणगान करें भक्तों का अधिक से अधिक। हाँ, और वैष्णवों को नियमित रूप से आप उनकी सेवा करिए, वैष्णव की सेवा करें, विशेष करके कार्तिक में वैष्णव सेवा का बहुत लाभ है। जो आप में से जो भी डिवोटी केयर डिपार्टमेंट में हैं, जो सिख डिवोटीज का की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके वजह से किचन से ज्यादा कॉन्टैक्ट बना के सिख डिवोटीज की संख्या ना बढ़ाएं। तो जो भी है कि इसलिए बताया गया है कि भोजन में भी तपस्या हम कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने बताया था कि कार्तिक मास में जो भी व्रत का अनुशीलन करते हैं उसका माघ मास में भी, मार्गशीर्ष मास में भी अनुशीलन करेंगे तो वो भी, उसे भी विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन दामोदर मास या जो दामोदर अष्टकम का अनुशीलन है, प्रोजेक्ट आई जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर, आई एम सपोज टू फिनिश बाय 9, कैन आई और आई विल वाइंड अप नाउ, ठीक है। तो कार्तिक मास में सब कुछ अधिक करना चाहिए, लेक्चर भी। तो यहाँ पे बताया गया कि श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि नहीं, ये तो बहुत सुंदर व्रत है, इसके बारे में बताया गया कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 22:128 में बताया गया कि सर्वदा शरणापति कार्तिकादि व्रत चतुष्षष्टि अंग यही परम महातत्व। बताया जाता है कि 64 जो मुख्य अंग हैं भक्ति के या उपचार है भगवान को अर्पित करने के लिए, तो हर प्रकार से इसमें जो भगवान के प्रति शरणागति प्राप्त हो सकती है वो इससे कि कार्तिक के व्रत का अनुशीलन इसमें अनिवार्य है। इसलिए गौड़ी वैष्णवों के लिए चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है। आचार्य तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि न सिर्फ कार्तिक मास का व्रत का आचरण करें, ये तो ऐसा हो गया कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य तेदि विश्वासम गोपतृप्ते वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधिम शरणागति। आत्मनिवेदन जो कि 9 अंगों में आता है भक्ति के, तो शरणागति इसमें सिर्फ आत्मनिवेदन हम करेंगे और बाकी 5 शरणागति की विधियों को त्याग देंगे तो ये सही है गलत है? सिर्फ शरणागति करें, बाकी 5 अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम इन सबका अनुशीलन ना करें या उचित महात्म्य ना दें तो ये सही है गलत है? सही है गलत है? तो इसी प्रकार सिर्फ कार्तिक मास का आचरण करें और बाकी 3 महीने का भूल जाएं वो भी गलत है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं चातुर्मास का आचरण कर रहे थे, तो ये बताया गया भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा। तो वैसे तो दामोदर लीला से कुछ 2-3 बातें बताएंगे और फिर विराम दे देंगे। वो ये है कि दामोदर लीला से हमें भगवान अपने कुछ लक्षण सिद्ध कर रहे हैं, अपने कुछ गुण वैशिष्ट्य सिद्ध कर रहे हैं, वो क्या क्या है, कुछ छह हैं विशेष करके। तो एक वर्तमान आचार्य के प्रवचन से हमने सीधा उड़ा दिया उसको और अभी प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहला, कृष्ण स्तन्य काम है, वो प्रभु जो आत्माराम है। आत्मा रामस्य मुनयो हृदयंदश्च गुरुक्रमा कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम इत्थं बुध गुणो हरे। वो तो आत्माराम है फिर भी अपनी माता यशोदा से स्तनपान की प्राप्ति के लिए वो हट लगा रहे थे या रो रहे थे उस समय। तो ये विह्वलित करने वाली बात है, जो आत्माराम कृष्ण है वो स्तन्य काम कैसे बने। तो ये एक विशेष गुण है भगवान का, जो वो इसलिए कि वो एक प्रकार से अपने भक्त पर निर्भर थे। जैसे आगे बढ़ेंगे महीने, कार्तिक बढ़ेगा आगे और जैसे विंटर के महीने और शुरू होंगे, तो एक प्रकार से भगवान पुजारियों पर आश्रित है, निर्भर है कि वो उनको ओढ़न षष्ठी के बाद गर्म कपड़े पहनाएं। भगवान एक व्यक्ति हैं। कोई कल पूछ रहा था, इसको दिल्ली में एक मीटिंग चल रहा था कि मोरपंख को आज से बंद कर दें क्या, मतलब आज से, कल बोला था कल से, मतलब आज से, क्योंकि दीप जलेगा तो वो भी बुझ जाएगा वगैरह, ऐसे सब कुछ बोल रहे थे। तो उत्तर ये आया, श्री मोहन प्रभु बोल रहे थे कि भगवान एक व्यक्ति हैं, जब आपको ठंड लगेगा तब आप मोरपंख बंद करिए तो भगवान को भी ठंड लगेगा। सिद्धांत वो है। तो इसी प्रकार भगवान निर्भर हो जाते हैं स्तन्य काम। फिर दूसरी बात, भगवान आप्त काम है कि वो पूर्णतया तृप्त हैं। जैसे कि रासलीला के वर्णन में, कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवान आप्त काम है, उन्हें किसी रासलीला की जरूरत नहीं है, किसी गोपियों की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतया तुष्ट है भगवान। फिर भी अपनी माता से कुछ ही स्तनपान किया था और उसके बावजूद वो भूखे थे। भगवान कैसे भूखे रह सकते हैं, लेकिन है। तो ये विशेष गुण है। तो एक स्तन्य कामा कि पहले चाहते थे कि स्तनपान करें और उसके बाद आप तक काम है फिर भी वो तृप्त नहीं हुए स्तनपान जितना किया उसके बाद। तीसरी बात, वो जो कि शुद्ध है, अपाप विद्ध है, तीनों गुणों से परे हैं। जब भगवान की भक्ति जो करते हैं उनके बारे में बताया गया कि सगुणान समति तेतन ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योग्य न सेवते। तो जिसकी भक्ति करने से तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, तो क्या वो व्यक्ति या भगवान तीनों गुणों से परे नहीं है, आया ना? हाँ, तो भी वो गुस्सा कर रहे थे, रजोगुण का एक लेश मात्र, रंश मात्र, कण भी उनमें नहीं था, फिर भी वो अपनी माता से गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे कि बीच में छोड़ के चले गए। एक विशेष गुण है भगवान का। और चौथा, कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बोलती हैं कि भय स्वरूप या यमराज मृत्यु स्वरूप, जैसे उपनिषदों में बताया गया भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमैति। मृत्यु स्वयं भागती है जिनके भय से, यद्भिभेति, कुंती महारानी बोलती हैं प्रथम स्कंद में अपनी प्रार्थनाओं में, स्वयं कृष्ण जिससे मृत्यु व्यक्तिगत स्वरूप मृत्यु का वो डरता है, भयभीत है, वो कृष्ण अपनी माता से भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। कितनी अजीब बात है, नहीं? तो ये चौथी बात है। और पांचवी, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसीन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। योगी मन की गति से लाखों हजारों साल चलते हुए जिस परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं भगवत स्वरूप में उनको पकड़ने के लिए, उस भगवान को माता यशोदा जो कि हृष्ट पुष्ट थी, भाग रही थी पीछे, उन्होंने पकड़ लिया और आराम से भागते हुए, जबकि काल यवन जो कि महान राक्षस था भागते हुए भगवान का पीछा कर रहा था। और रुक्मिणी जी से मिलने के लिए जब भगवान रणछोड़ राय बन के जा रहे थे तो आराम से ऐसा जैसे कि पार्क में टहल रहे हैं ऐसा चल रहे हैं, और उनको पकड़ नहीं पाए काल यवन। सोचिए, तो ये है भगवान की विशेष कृपा कि भक्त्या माम अभिजानाति अहम भक्त पराधीना, ये सब इससे सिद्ध होते हैं भक्तवत्सलता भगवान की। भगवान स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, ये है अगला। जो देवताओं को कर्म के बंधन से बांधते हैं, यस्त्विंद्र गोप मदवेंद्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन मातुन होती, इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक कर्म से बंधित हैं, उनको नया शरीर मिलता है। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति बाजम, लेकिन भक्ति से इस कर्म के बंधन को तोड़ सकते हैं, और इसी भक्ति से उस परम भगवान श्री कृष्ण दामोदर को भी बांध सकते हैं। यह है छठा विशेष गुण भगवान का। जैसे कि श्रीमती राधा रानी ने एक बार भगवान लेट आ गए थे तो कुंज में पूरा आयोजन करने के बाद राधा रानी देखा कि कृष्ण देरी से आए हैं, तो आचार्य बताते हैं कि उनको सोने की लता से उन्होंने बांध दिया और छोड़ नहीं रहे थे। और यशोदा माई जब बांधने की कोशिश कर रही थी तो हमेशा दो अंगुल छोटा पड़ता था, और वो दो अंगुल हैं प्रयत्न हमारे अथवा उद्यम, और दूसरा कृपा भगवान की। और कार्तिक मास के आचरण में अनुशीलन में भी हमें हृदय से कोशिश करनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, और साथ ही साथ कृपा की याचना करनी चाहिए कि मैं जो संकल्प आज ले रहा हूं, व्रत का अनुशीलन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके पालन में मैं सफल हूं। हे भगवान, मेरे में तो क्षमता नहीं है। जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं, मैं तो एक भौण हूं जो कि चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपको तो मैं पकड़ नहीं सकता। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, मैं आत्मभक्त नहीं हूं, मैं अपने ज्ञान से अपनी तपस्या से यज्ञ से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हे प्रभु आप कृपालु हो कि दामोदर मास में आप पकड़ में आ जाते हो, तो इसलिए मैं यदि आपके पकड़ में भी ना आऊं, कृपया मुझे अपने पकड़ में रखना ताकि मैं इस कार्तिक मास का सदुपयोग करूं हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता और सेवा के लिए। हरे कृष्ण। श्री श्री कार्तिक मास ऊर्ज व्रत की, श्रील मुरारी गुप्त तिरुभावतिथि महोत्सव की, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।